हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 3। गेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है और न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। संन्यास शब्द को अगर थोड़ा विचार करें, संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास। न्यास मतलब स्थित होना और संन्यास मतलब सम्यक रूप से स्थित होना। सभी जीवात्माओं की स्थिति वास्तविक स्थिति है कि वो कृष्ण के दास हैं। तो संन्यास लेने का अर्थ है अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होना। और इस प्रकार से व्यक्ति जब रहता है तो इस जगत में सच्चे रूप से वो संन्यासी रह सकता है। हम घृणा करते हैं और आकांक्षा करते हैं उन वस्तुओं की जो हमारे भोग के लिए अच्छी हैं, यह हमारे भोग के लिए खराब है। तो एक सन्यासी, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इस भावना से रहित रहता है कि इस जगत की कोई भी वस्तु उसकी है। जब ये भावना से हम मुक्त हो जाते हैं कि इस जगत की वस्तुएं मेरी हैं, तो उनको अपने भोग के रूप में के लिए देखने में से भी हम विरत हो जाते हैं। और इसलिए बाह्य रूप से जो घृणा का कार्य घृणा के योग्य हो सकती हैं, उसको भी भक्त को करने में कोई हिचक नहीं होती है। कुछ उदाहरण आपको मैं दूंगा। एक बार एक सन्यासी की फोटो प्रकाशित की गई जिसमें कोई व्यक्ति उनको 10 रुपये दे रहा है और वो घृणा प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, ये तो माया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि मेरा फोटो बनवाओ जिसमें बहुत सारे पैसे मुझे दे रहे हैं और मैं कहूँगा कि हाँ मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो क्या प्रभुपाद जी भोगी थे? नहीं, हम सब जानते हैं। प्रभुपाद जी का कहने का अर्थ ये था कि उस धन का उपयोग वो कृष्ण की सेवा में करना चाहते हैं। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भक्त कुछ नहीं चाहता, वो तो भगवान का प्रसाद पा करके और 3x6 का स्पेस प्राप्त करके वो संतुष्ट रहता है। लेकिन भगवान के लिए वो सब कुछ स्वीकार कर सकता है और भगवान की सेवा में उसको नियोजित कर सकता है। एक और बात यहाँ पे भगवान गीता में बोल रहे हैं, सुखम बंधात प्रमुच्यते। भक्ति के पथ में हमें कर्म करने होते हैं और उन कर्मों के द्वारा हम अपने कर्म बंधन को काटते हैं। कैसे होता है? जब कर्मों को कृष्ण के लिए ही किया जाता है तो वही कर्म हमारे कर्म बंधन को, हमारी अविद्या को काट देते हैं, हमारे अज्ञान को नष्ट कर देते हैं। और क्योंकि जीवात्मा के लिए कर्म करना सहज है, इच्छाओं को रखना सहज है, इस कारण से भक्ति योग बहुत सहज हो जाता है। भक्ति का तो तरीका ही है भगवान से प्रेम करना। तो प्रेम करना तो हम सबको आता है, खाली उसको भगवान की तरफ मोड़ना है। और मोड़ने का तरीका क्या है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ बातचीत करते हैं, प्रेम करते हैं तो उससे कुछ उपहार लेते हैं, उपहार देते हैं। प्रेम करते हैं तो उसे कुछ खाने को देते हैं, खाने के लिए लेते हैं। तो भक्ति में ये क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम साक्षात भगवान से सुन रहे होते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र हम बोलते हैं तो भगवान से साक्षात बात कर रहे होते हैं, भगवान हमारे इस हरे कृष्ण मंत्र को सुनते हैं। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उस अन्न को ग्रहण करते हैं और अपना प्रसाद हमको देते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। और भगवान को भी व्यक्ति जो विग्रह भगवान का होता है उसको हम सुंदर सुंदर वस्त्र दे सकते हैं या उनके लिए मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को उपहार देते हैं, और भगवान ने तो पूरे जगत की व्यवस्था हमको उपहार के स्वरूप में दे ही रखी है। तो भगवान की तरफ से प्रेम प्रदर्शित करने में कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो हमारी तरफ से, जैसे भगवान भगवद्गीता में बोल रहे हैं, सुनने की जरूरत हमको है। और फिर देखिए कि भगवान के प्रति प्रीति कैसे नहीं उत्पन्न होती है। दूसरी बात यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जीवात्मा आत्म साक्षात्कार जब प्राप्त कर लेगी तो भगवान में जाकर लीन हो जाएगी, जो कि भारत में प्राय एक धारणा है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती है, बल्कि आत्मा की इच्छाएं परमात्मा की इच्छा में लीन हो जाती हैं। क्या अर्थ है? अर्थ ये है, भगवान चाहते हैं कि जीव उनकी सेवा करे, तो हम अपनी स्वतंत्र भोग की इच्छा को लीन कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, और केवल ये इच्छा रह जाती है कि मैं कृष्ण की प्रेम में सेवा करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो नष्ट हो जाएगा। हम खत्म नहीं होते हैं, हमारी भगवान से अलग भोगने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद है कि इस श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। चौथा श्लोक को देखेंगे, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न। इससे पहले कि श्लोक में जाऊं, इससे एक और बात बोलना चाहता हूं। प्राय जगत में इस धर्म में धर्म का आचरण लोग इसलिए करते हैं ताकि उनके दुखों की निवृत्ति हो जाए। बुद्धि कम है तो सरस्वती जी की पूजा कर ले, धन नहीं है तो लक्ष्मी जी की पूजा करें, या और कोई कष्ट आ रहा है तो शनि देवता की पूजा करें। तो जनरली ये सामान्यतः लोग अपने दुखों की निवृत्ति करने के लिए पूजा करते हैं, क्योंकि जगत दुख का घर है तो दुखे तो आते ही रहते हैं। लेकिन वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हम उनसे अपने संबंध को जागृत करने के लिए कर रहे हैं। और वो तरीका है क्या, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, बिना छल कपट से रहित होकर भगवान की पूजा करना। ये सब छल ही है जिसमें हम केवल अपनी दुखों की निवृत्ति चाहते हैं या कुछ भौतिक मांगना चाहते हैं, जो कि आप भगवान से मांग सकते हो। लेकिन फिर भी जब हम भगवान से कुछ भौतिक मांगते हैं तो हम ये कहते हैं कि भगवान मुझे ये सब चीजें आपसे अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं, मुझे आप नहीं चाहिए, वस्तुएं चाहिए। खैर, ऐसे व्यक्ति भी भगवान कृपा करते हैं और उसके हृदय को शुद्ध करते हैं अंततोगत्वा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता नहीं है, अपितु तो भगवान की सेवा करना चाहता। जैसे वृंदावन में एक रिक्शा वाला भी बहुत मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, लेकिन अपनी सेवा को वो 20 रुपए में बेच देता है। तो उसी प्रकार से हम भगवान का भजन कर रहे हैं और उसके बदले में अगर कुछ भौतिक मांगते हैं तो वही रिक्शे वाली स्थिति हो जाती है। तो बुद्धिमान मनुष्य भगवान से कुछ भौतिक मांगने के बजाय उनसे उनका चरणों में प्रेम मांगता है, जिसके द्वारा ही आत्मा को संतुष्टि और सुख मिल सकता है, जिस सुख की खोज वो जन जन्मांतर में कर रही है। सांख्य योगो पृथग बाल प्रवदंती न पंडिता एकमाप्य स्थित सम्यक उभयोर्विंदते फलम। श्लोक क्रमांक 4 को देख रहे हैं, अज्ञानी ही भक्ति या कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। देखिए, सांख्य में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को किसी कार्य में नहीं लगाता, अपितु बुद्धि के द्वारा निर्णय करने लगता है कि वस्तु जगत किससे आया है, जगत में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, भूमि है, जल है, वायु है, आकाश है, और फिर ये ढूंढने का प्रयास करता है कि ये चीजें आती कहाँ से हैं। भक्ति में हम श्रद्धा से भगवद गीता को सुन करके स्वीकार कर लेते हैं कि सारी वस्तुएं जो हैं उनके अंततोगत्वा स्रोत हैं वो भगवान कृष्ण हैं, और उनकी हम सेवा में लग जाते हैं। तो जो पद्धतियां हैं वो क्रिया की दृष्टि से अलग हैं। सांख्य में ज्ञान का महत्व तो बहुत अधिक है, और भक्ति में भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान श्रद्धा पर आधारित है। श्रद्धा है भगवान के वचनों पे, गुरु के वचनों पे, सुन करके सीधे भगवान की भक्ति करने लगते हैं, और देखा जाए तो ये अधिक बुद्धिमान है। इस बात को भगवान गीता में भी आगे बोलते हैं, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो इस प्रकार के सांख्य योगी हैं, ज्ञान योगी हैं, जो लगे रहते हैं इस चिंतन में कि इस जगत का स्रोत कौन है, अंततः तो वो समझते हैं कि भगवान वासुदेव ही इसके स्रोत हैं, और उनकी शरण हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सीधे सीधे सुन ले भगवान से और विश्वास कर ले कि कृष्ण भगवान हैं और उनकी सेवा में लग जाए, तो भी वही उसी उद्देश्य को प्राप्त करता है। तो यानी कि दोनों ही एक ही फल को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान के चरणों की प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग अलग है। लेकिन समय बहुत व्यतीत हो जाता है इस ज्ञान के अध्ययन में, तो इसलिए बेहतर है कि व्यक्ति श्रद्धा से भगवद गीता की बात को स्वीकार करके कृष्ण को अपने भगवान के रूप में स्वीकार करे और उनकी सेवा में लग जाए। तो हाँ, एक श्लोक और देखेंगे, पांच श्लोक क्रमांक 5। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और जो इस तरह और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्ति होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता, इसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृत वश कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखाई दिखती है, दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तु को यथारूप में देखता है। हम क्या देख पाते हैं या हम क्या जानते हैं, जान पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या जानते हैं। हमारे पास हमारे ही शरीर का एक्सरे हो सकता है और हमारे वो सामने हो सकता है, लेकिन वो देखने के बावजूद भी हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे शरीर में गड़बड़ क्या है, लेकिन डॉक्टर तुरंत देख करके समझा सकता है कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है। तो देखने के बावजूद भी हम कितना समझ पाएंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना देख सकते हैं। तो केवल देखने मात्र से व्यक्ति नहीं जा समझ पाता है, बल्कि ज्ञान के द्वारा देखना चाहिए। तो जो व्यक्ति सांख्य योगी है, वो अपने एनालिसिस के द्वारा समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे अपने इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे वो विरक्ति को, इस जगत से विरक्ति को मुख्यतः मुख्य वजन दे रहा है। लेकिन एक भक्त सीधे समझता है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, तो इस जगत से अपने आप विरक्त हो जाता है। मैं इस जगत का हूँ ही नहीं, इस जगत की उथल पुथल से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है भगवान कृष्ण की सेवा से। और जब इस प्रकार की भावना होती है, तो वो अपने आप ही जगत से विरक्त हो जाता है। उसको अलग से विरक्ति का अनुशीलन करने की जरूरत नहीं है। प्रायः हम प्रचार में बोलते हैं कि इंसान को आत्म जिज्ञासा करने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाली बैठे रूम में बैठे सोचते रहे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। भक्ति का पथ ये नहीं है, अपितु ये हमको शुरुआत में हेल्प जरूर कर सकता है कि हम शरीर नहीं हैं तो हम आत्मा हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन आत्मा की क्रियाओं में हम सीधे लगते हैं भक्ति के द्वारा। भगवद गीता को सुनना ये आत्मा की क्रिया है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये आत्मा की क्रिया है, भगवान के लिए माला बनाना ये आत्मा की क्रिया है, भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जप करना, उनकी लीलाओं को सुनना, ये सब आत्मा की क्रिया है। और इससे अपने आप ही आत्मा के हृदय की अविद्या जो है वो नष्ट हो जाती है, और अपने स्वरूप को हम समझ पाते हैं। और सांख्य योगी उसको अलग से करते हैं ज्ञान योग के अभ्यास के द्वारा। तो अंततोगत्वा इस निष्कर्ष पे वो आते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन फिर वही बात मैं बोलूंगा, जो श्रद्धा से स्वीकार कर लेता है तो फिर वो उसकी प्रगति जल्दी हो जाती है, कि जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करता तब तक ज्ञान योगी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, बस उसके मन में संशय होता है, इसलिए ज्ञान का अनुशीलन करके वो भगवान की प्राप्ति करता है। श्रील प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि तुम फिलॉसफी ना जानो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर ये स्वीकार कर ले कि कृष्ण भगवान है और उनका भजन करोगे तो भगवान के धाम चले जाओगे, और अगर कन्विंस नहीं हो तो फिर पुस्तकें पढ़ो और उसके द्वारा कन्विंस हो, अपने अपने बुद्धि को से निर्णय लो और फिर भगवान के भजन करो। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मन में हमारे संशय आते ही रहते हैं, इसलिए बुद्धि को शास्त्र के द्वारा हमें बार बार कह सकते हैं स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि हम इस निर्णय पर रहें कि कृष्ण भगवान है और हम उनकी सेवा करनी है। ठीक है, तो क्या हम लोग भक्ति के बिना सुखी हो सकते हैं? भाई कर्म बंधन कर्म से लगता है तो कर्म त्याग देते हैं, तो उसके बारे में चर्चा भगवान करेंगे, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण।